सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं नवीन कुमार भारंगर, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय नरोरा का हिंदी अध्यापक, अनुपम मिश्र द्वारा रचित राजस्थान की बूंदें रचना पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत पाठ या लेख राजस्थान की रजत बूंदें लेखक अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखित है। इसमें लेखक के द्वारा राजस्थान की मरुस्थली में पानी के स्रोत कुएं को वर्णित किया गया है, जिसका निर्माण राजस्थान में विशेषतः जल संरक्षण के लिए किया जाता है। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी के नाम से जाना जाता है। लेखक अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं, जो पसीने से तरबतर हैं। 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, अब भीतर में गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का जो व्यास है वह बहुत ही संकरा है, जिसके लिए खुदाई का काम बसौली से किया जा रहा है। बसौली एक प्रकार की छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, जो नुकीला फल होता है। वह लोहे का और जो हत्था होता है वह लकड़ी का। कुएं की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर में खड़े लोग कुछ समयावधि में मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते रहते हैं, जिसके कारण ताजी हवा नीचे की ओर जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर लौटती है। ऊपर से फेंकी जाने वाली रेत से खुद को सुरक्षित रखने के लिए चेलवांजी अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक टोप रूपी बर्तन पहन लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि चेलवांजी, जिसे चेजारो भी कहा जाता है, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं। उनका यह काम चेजा कहलाता है। जिस कुएं को चेजारो बना रहे हैं वह एक छोटा सा कुआं ही है। राजस्थान में अलग अलग सीनों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ पर कहीं कहीं रेत के सतह से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी भी मिलती है। कुएं में पाए जाने वाले भूजल प्रायः खारे होने की वजह से पीने लायक नहीं होते। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में कुइयां बनाने की आवश्यकता होती है। जो खड़िया पट्टी होती है वे वर्षा जल के गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्रों में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। कुएं के निर्माण से रेत में विलीन नमी बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। परिणाम स्वरूप यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत के समान मिठास लिए होता है। आगे लेखक कहते हैं कि इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को तीन रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के मध्य पानी का तीसरा रूप है रेजाणी पानी कहलाता है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी की रेजाणी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेखक कहते हैं कि रेजाणी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बनता है। इसके अभाव में ही रेजाणी पानी खारे पाताली पानी से मिलकर खारा हो जाता है। इसी रेजाणी पानी को समेटने के लिए कुएं का निर्माण होता है। लेखक अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें छोटी सी भी चूक चेजारों की जान ले सकती है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप, एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, के ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन काम पूरा होते होते कुई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा कम होने लगती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत कुई में काम कर रहे चेलवान जी को राहत दे जाती है। कभी कभी कुई बनाते समय ईंट की चिनाई में मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए लकड़ी के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में से में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप या चग की रस्सी से बांधा जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है, इसीलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि कुएं की सफलता यानी सजलता का उत्सव का अवसर बन जाती है। यहाँ की परंपरा के अनुसार कुएं का काम पूरा होने के बाद चेलवान जी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। उन्हें विदाई के समय तरह तरह के भेंट दिए जाते थे। गांव के साथ चेजारों का संबंध यहीं नहीं टूट जाता था, बल्कि समस्त तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट उन्हें दी जाती थी और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगा दिया जाता था। अब केवल मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। आगे अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसीलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। प्रत्येक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उसे उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक भूमि है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में साल भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से वर्ष भर कुइयों में पानी भरेगा। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी चिरपरिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घंटा मीठा पानी निकाला जा सकता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी का अस्तित्व न होने के कारण कुई हर जगह नहीं मिलती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में इस पट्टी के अस्तित्व हैं, जिस कारण से वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ पाई जाती हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो या धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बिल्लियों के नाम से भी जाने जाती हैं, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। अतः इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती हैं कुई। तो आज हमने राजस्थान की रजत बूंदें पाठ को अच्छे तरीके से समझा है। और कुई का महत्व भी समझा है। इसी के साथ पाठ को विराम दिया जाता है।